नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने के निर्देश जारी किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेगा। ट्रंप ने यूरोप में सहयोगी देशों पर लगाए जाने वाले जवाबी शुल्क को भी रद्द करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड के संबंध में मांगों के बाद यूरोपीय संसद ने अमरीका के साथ यूरोपीय संघ की व्यापार समझौता प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अनुरोध को खारिज किया। बांग्लादेश के मैच भारत में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही खेले जाएंगे और भारत ने नागपुर में 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें विसंगतियों और गैर मान्यता प्राप्त श्रेणियों के तहत नामों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है और प्रभावित मतदाताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा करने और सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को चल रहे SIR 2026 से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के इस महीने के आदेश का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में निर्णायक मोड़ पर है, जहां सुधारों का उद्देश्य उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि सरकार हाल ही में पारित परमाणु कानून के अंतर्गत विस्तृत नियम बनाने की प्रक्रिया में है। नीति आयोग ने नई दिल्ली में सीमेंट, एल्यूमिनियम तथा लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्रों के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की कार्य योजना पर रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भारत के विकास में MSME क्षेत्र और सतत आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया।
मैं खास तौर पर दो पहलुओं पर ध्यान देना चाहता हूँ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और विकास। भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 6.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि इससे थोड़ी तेज है, क्योंकि हमारी जनसंख्या वृद्धि दर साल 2000 से लगातार घट रही है, जो अपने आप में एक अच्छी और प्रभावशाली बात है।
अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने आर्कटिक द्वीप पर वाशिंगटन को स्वामित्व दिए जाने की अपनी मांग दोहराई है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए श्री ट्रंप ने कहा कि वे ग्रीनलैंड के अधिग्रहण पर चर्चा के लिए तत्काल बातचीत शुरू करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। डेनमार्क अमरीका का सहयोगी देश भी है। अमरीका और डेनमार्क उन 32 उत्तरी अमरीकी और यूरोपीय देशों में शामिल हैं जो नाटो नामक सैन्य गठबंधन बनाते हैं। ग्रीनलैंड का कहना है कि वो अमरीका का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जिसका द्वीप पर पहले से ही एक सैन्य अड्डा है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के लिए बातचीत शुरू की है, क्योंकि अमरीका के अलावा कोई भी देश इसे सुरक्षित करने की स्थिति में नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमरीका के नियंत्रण को लेकर यूरोपीय देशों पर लगाए जाने वाले शुल्क को रद्द कर दिया है। ये फैसला नाटो प्रमुख के साथ आर्कटिक सुरक्षा से जुड़े भविष्य के समझौते के ढांचे पर सहमति के बाद लिया गया है। ट्रंप ने यूरोपीय सहयोगियों की आलोचना करते हुए ये कहा था कि नाटो को अमरीकी विस्तारवाद को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड के संबंध में मांगों के बाद यूरोपीय संसद ने अमरीका के साथ यूरोपीय संघ की व्यापार समझौता प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय लिया है। यूरोपीय संघ की संसद ने अमरीका से आयात होने वाले कई सामानों पर लगने वाले आयात शुल्क हटाने से जुड़े विधायी प्रस्तावों पर बहस के दौरान ये फैसला लिया। ये प्रस्ताव जुलाई के अंत में स्कॉटलैंड के टनबेरी में हुए समझौते का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा अमरीकी लॉबस्टर पर शून्य शुल्क को जारी रखने का भी प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों को यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की मंजूरी की आवश्यकता है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए वैश्विक नेताओं से कहा है कि रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वर्ष 2015 में शुरू किया था। इस विशेष श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना की।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पिछले दो दशकों में भारत की सबसे गतिशील महानगरीय अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है, जो सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, विनिर्माण और सेवाओं में तेजी से बढ़त के कारण हुआ है। हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना को शहर के लिए एक भरोसेमंद, कुशल और टिकाऊ शहरी गतिशीलता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। हैदराबाद मेट्रो के प्रथम चरण में 69.2 किलोमीटर में फैले 3 कॉरिडोर शामिल हैं। 30 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति के तहत इस परियोजना की उच्चतम स्तर पर समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्णायक निर्देश जारी किए कि संस्थागत और वित्तीय बाधाएं परियोजना में रुकावट न डाले। प्रोजेक्ट के पीपीपी स्ट्रक्चर को देखते हुए तेलंगाना सरकार, आर्थिक मामलों के विभाग और शहरी विकास मंत्रालय को मेट्रो की सुचारू और समय पर शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए। इससे कई एजेंसियों के बीच समन्वित प्रयास हुए। इन प्रगति संचालित हस्तक्षेपों ने परियोजना के एक महत्वपूर्ण चरण में स्पष्टता और गति प्रदान की। नतीजतन हैदराबाद मेट्रो सभी 3 कॉरिडोर में समन्वित तरीके से आगे बढ़ पाई, जिसमें लगातार सेक्शन चालू होते गए। इस तेजी से यात्रियों को आकर्षित किया। हैदराबाद मेट्रो ने शहर के कुछ सबसे भीड़ भाड़ वाले कॉरिडोर पर यात्रा के समय को काफी कम कर दिया है, सुरक्षा में सुधार किया है और एक भरोसेमंद विकल्प प्रदान किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि आज विजय चौक पर होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के पूर्वाभ्यास के कारण नई दिल्ली के कुछ हिस्सों में यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। विजय चौक पर शाम 4 से 6:30 बजे तक के लिए यातायात बंद रहेगा। कृषि भवन से विजय चौक की ओर रायसीना रोड पर भी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। छत्तीसगढ़ में रायपुर साहित्य महोत्सव कल से शुरू होने जा रहा है। 3 दिन के इस साहित्यिक महोत्सव में देशभर के कई प्रख्यात लेखक, कवि, कथाकार, कलाकार और रंगकर्मी भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
रायपुर में कल से शुरू हो रहे 3 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और उसे एक व्यापक मंच प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा ने बताया कि इस महोत्सव के दौरान कुल 42 सत्र होंगे
अलग अलग विषयों पर, जिसमें 120 से अधिक विचारक, चिंतक और साहित्यकार लेखक उसमें शिरकत करेंगे, जिसमें देश भर से आने वाले साहित्यकारों की संख्या 58 है और हमारे प्रदेश के ही साहित्यकार 60 से अधिक की संख्या में हैं।
इस साहित्यिक उत्सव में राज्य के विभिन्न स्कूलों और कॉलेज के विद्यार्थी भी शामिल होंगे। इस तरह से यह उत्सव युवा पीढ़ी को साहित्य, भाषा और संस्कृति से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
जी मुनीश, खेल खबरों में सबसे पहले बात क्रिकेट की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB के 2020 विश्व कप मैचों को श्रीलंका में कराने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। ICC ने कहा कि मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। ICC ने कहा कि भारत में टूर्नामेंट के किसी भी स्थल पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों, अधिकारियों या प्रशंसकों की सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। बांग्लादेश को अपनी भागीदारी की पुष्टि करने के लिए कल तक का समय दिया गया था। ICC बोर्ड ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए एक और दिन का समय दिया है। यदि बांग्लादेश टूर्नामेंट से हटने का फैसला करता है तो मौजूदा रैंकिंग के अनुसार स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह ले सकता है। और भारत ने कल नागपुर में 5 20-20 मैच की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 48 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल रायपुर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज यूपी वॉरियर्स का सामना गुजरात जायंट्स से होगा। वडोदरा में ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और मुनीष, अगर बात करें बैडमिंटन की, तो इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला हांगकांग के जेसन गुनावन से होगा, जबकि किदांबी श्रीकांत चीनी ताइपे के चाउ टीएन चेन के सामने चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का सामना डेनमार्क की लाइन कर्जस फेल्ड से होगा। वहीं पुरुष डबल्स में भारत के अर्जुन मदाथिल रामचंद्रन और हरिहरन अम्स करुणन की जोड़ी मलेशियाई जोड़ी से खेलेगी। जी मुनीश, खेलों की दुनिया से बस आज इतना ही।
शुक्रिया मुकेश। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ इलाकों में तेज बारिश और आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज आंधी तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी दिन के दौरान ऐसी ही स्थिति रह सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रोशन सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि असाधारण वीरता और साहस से ठाकुर रोशन सिंह ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी और युवाओं को संगठित होकर सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहतनाज।
धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सख्त रुख को सुर्खियों में जगह दी है। अमर उजाला ने समाचार को शीर्षक दिया है, अरावली में अवैध खनन से अपूर्णीय क्षति हो सकती है, गठित होगी विशेषज्ञ समिति। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अरावली अवैध खनन से हो सकती है अपूर्णीय क्षति, बनेगी जांच समिति। देशबंधु और हिंदुस्तान ने 2031 तक बढ़ाई गई अटल पेंशन योजना के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और पंजाब केसरी के पहले पन्ने पर भी ये समाचार विस्तृत विश्लेषण सहित प्रकाशित किया है। वीर अर्जुन ने दाउस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के संबोधन को पहले पन्ने पर अपना प्रमुख समाचार बनाते हुए उनके शब्दों को शीर्षक में स्थान दिया है, भारत निश्चित रूप से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। बॉक्स में अखबार की टिप्पणी है कि चुनौती तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना नहीं है बल्कि प्रति व्यक्ति आय को ऊंचे स्तर तक ले जाना है। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय में अगले महीने से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप से अपने आइडियल रवैये के कारण बाहर होने की कगार पर खड़ी बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बारे में लिखा है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों के बयान बताते हैं कि वे विश्व कप में खेलने के इच्छुक हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी आंतरिक राजनीति की कीमत चुकानी पड़ेगी। पत्र खेल को खेल भावना के साथ देखने की अहमियत पर बल देता है। पत्र ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, खेल का नुकसान।
और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने के निर्देश जारी किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमरीका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए बल प्रयोग नहीं करेगा। ट्रंप ने यूरोप में सहयोगी देशों पर लगाए जाने वाले जवाबी शुल्क को भी रद्द करने की घोषणा की। राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड के संबंध में मांगों के बाद यूरोपीय संसद ने अमरीका के साथ यूरोपीय संघ की व्यापार समझौता प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अनुरोध को खारिज किया। बांग्लादेश के मैच भारत में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही खेले जाएंगे। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।